نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وسلم أما بعد الله أكبر علم علم کا جو حسن ہے وہ عمل ہے اور عمل کا جو حسن ہے وہ اخلاص ہے اور اخلاص کا جو حسن ہے وہ نیت ہے اور نیت کا جو حسن ہے وہ قلب ہے اور قلب کا جو حسن ہے وہ ذکر اللہ ہے تو سارا معاملہ اسی سے چلتا ہے دوستو دل جو ہے حقیقت پہ سینٹر یہی ہے ہر چیز کا اگر دل صاف ستھرا صحیح ہے تو پھر آگے معاملہ چلتا ہے انسان کا دل اچھا ہوگا تو نیت بھی اچھی ہوگی نیت اچھی ہوگی تو اخلاص بھی خوب ہوگا اخلاص بھی خوب ہوگا تو عمل بھی بہت اچھا ہوگا عمل اچھا ہوگا تو پھر علم کا فائدہ ہوگا سارے جتنے بھی انسان کے مراتب ہیں وہ انسان کے قلب کے ساتھ چلتے قلب گندا مندا ہے کچھ انسان کو حاصل نہیں ہوتا قلب ایک ایسی چیز ہے کہ وہ گندا ہونے والی چیز ہے اور اچھی ہونے والی چیز ہے یہ تو قرآن اور حدیث پہ شاہد ہے کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا دل کی خرابی سے اس کی ڈسٹ تو عجیب ہے کیونکہ اندر ہے اور مندر کا معاملہ ہے سارا گند بھی اس کے اندر کی ہے ظاہر میں نظر بھی نہیں آتا چیز اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت چیز بھی کوئی نہیں اور اس سے زیادہ گندی چیز بھی کوئی نہیں حدیث میں جیسے مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دل انسان کوئی گناہ کرتا ہے دل کی گندگی کیا ہے گناہ ہے جیسے جسم کی گندگی ہے ڈسٹ ہے اور بری چیزیں ہیں انسان کا جسم اور کپڑے خراب ہوتے ہیں اسی طرح دل کی خرابی مٹی وغیرہ سے نہیں ہوتی بلکہ کس سے ہوتی ہے گناہ سے ہوتی ہے اور گناہ انسان کر ہی دیتا ہے کچھ نہ کچھ تو چلی جاتا ہے معاملہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر جا کے فوراً ایک ڈسٹ کا ڈبہ بن جاتا ہے اور ڈبہ جو ہوتا ہے ڈسٹ کا وہ جم جاتا ہے دل کے اوپر اور پھر اس سے گناہ ہو گیا پھر بڑا ہو گیا پھر گناہ کیا پھر بڑا ہو گیا حتیٰ کہ انسان سے گناہ کرتے کرتے وہ دل جو ہوتا ہے انسان کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے جیسے کوئلہ اور اس کی جو صلاحیتیں ساری سارا جو نور ہے دل کا وہ سارا ظاہر ہو جاتا ہے مین چیز دل ہی ہے جب وہ سیاہ ہو گیا بالکل تو بالکل بیکار ہو جاتا ہے وہ دل ایسے ہوتا ہے کہ سمن بکن امین والا معاملہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں کچھ سمجھ حقیقت رہتی ہے نہ اس میں کوئی نگاہ کی حقیقت رہتی ہے نہ کوئی بولنے کا انداز ہوتا ہے بالکل اس میں کچھ ختم ہو جاتا ہے مٹی بن جاتا ہے دل سیاہ کوئلہ ہو جاتا ہے گناہوں کے ساتھ اور جب یہ خراب ہو گیا دل لامحالہ طور پر پھر انسان کی جو نیت ہے سب سے بڑا اس پر اثر پڑتا ہے انما الاعمال بالنیات سب سے بڑی چیز جو ہے پہلی چیز انسان کی ہے نیت ہے کتنے بڑے آپ ہم اعمال کریں اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے तो अमाल बेकार हो जाता है बिल्कुल। और जब तक दिल सही ना हो नीयत सही बनी नहीं सकती। तो जाहिर यह हुआ कि जब दिल खराब हुआ तो इंसान की जो नीयत है वो बनी नहीं सकती। नीयत खराब हुई किसी अमल करने के लिए, किसी फेल को करने के लिए, तो अगला जो स्टेज जो अखलास की है, लिल्लाहियत जिसको कहते हैं कि भाई ये अमल हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, वो मैं अल्लाह के लिए नहीं होता, मैं अल्लाह के लिए नहीं रहता हूँ, उसमें फिर रिया आ जाती है, दिखावा आ जाता है, बनावट आ जाती है। बस दुनिया में से तारीफें उसको मिलती हैं लेकिन आखिरत के अंदर उसको कोई अजर नहीं मिलता। इंसान सबसे गंदी चीज़ रिया है कि कोई अमल भी कर रहा है इंसान और उसमें रिया भी शामिल है। हम कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन मकसद यह है कि कोई देखे हमें हम कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं कोई देखे हमें हम नमाज पढ़ रहे हैं, या कोई हमारी तारीफ करे, या उसमें नीयत ही यही है हमारी कि हम फलां इंसानों के लिए ये काम कर रहे हैं। तो कितनी मेहनत इंसान की आखिरत में ज़ाय हो जाएगी, रिया करने वालों को कुछ आखिरत में सलाह नहीं मिलता। तो जब ये इख़लास ही ख़त्म हो गया इंसान में, तुम्हें अमल की क्या तक वक़्त रही, क्या उसमें कीमत क्या रही अल्लाह के दरबार में उस अमल की। ये वह माल हैं, वो चीज़ें हैं जिसके बारे हदीस में आता है अल्लाह ताला पलट के इंसान के मुंह पर मार देगा। तो जो अखलास ही ख़त्म हो गया तो इल्म क्या फ़ायदा देगा उस पर, वो भी बेकार हो गया। सर मुकामी को नहीं, इतना बड़ा मुकाम जो इल्म का अल्लाह ताला ने दिया है कि आलिम जो होते हैं वो अम्बिया के वारिस होते हैं। जितने भी अमल के साथ इंसान को अखलास का अमल जो हो, जो इनामात मिलते हैं मार्फत में, इरफान में, अल्लाह के कुर्ब के, वो सारे डप हो जाते हैं, क्योंकि ना ही अखलास है उसमें, ना ही उसके अंदर हमारा सही अमल है, ना ही हमारी सही नीयत है। सारा गंद किससे निकला है? दिल की खराबी से। तो भाई अब आप देखें कि सारी भी जितनी हमारी बुनियाद है पूरी आखिरत तक अल्लाह तक पहुंचने के लिए कोई एक ही चीज़ है और वो है दिल। जिसने अपने दिल को बना लिया, दिल को अच्छा कर लिया, दिल को साफ कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गया शख्स, उसे ही पहुंच गया। तो अब ये है कि भाई दिल की सफाई और तस्किया ये बड़ी अहम चीज़ है। कैसे सफाई हो, दिल इतना चमक जाए इंसान का। अल्लाह सुबहान तआला ने जिस हदीस के अंदर आता है कुल्ला शैन सकालतन सकालतन कल्ब ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि भाई अल्लाह सुबहान तआला ने ऐसे इंतज़ाम किया है दुनिया के अंदर कि कोई चीज़ गंदी ना रहे। अल्लाह ने पानी बना दिया साफ और शफाफ पानी, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को हर पाक रखता है, साफ रखता है जिसम को, कोई गंद नहीं आने देता, कपड़े धुलते हैं, सफाई भी होती है। और जितनी चीज़ें हैं दहात हैं उनके लिए आग से सफाई हो जाती है, जानवर जो है तो इनके लिए मिट्टी के पास मिट्टी में लौटते हैं आप देखते हैं जानवर, उससे उनकी पाकी हो जाती है। तो कर्ज यह है कि हर चीज़ के लिए अल्लाह पाक ने, ये हदीस है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि अल्लाह तो जमाल है और जमाल हसीन चीज़ को पसंद करते हैं, कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं जो गंदी है दुनिया के अंदर। तो उसका इंतज़ाम अल्लाह पाक ने किया है। तो सारी दुनिया की जब चीज़ों का अल्लाह ने इंतज़ाम किया है तो जो असल चीज़ है इंसान के अंदर दिल, जिससे सारा मामला बनता है, तो उसका भी इंतजाम अल्लाह पाक ने किया है ना। कुल शैन सकीलतन सकीलतन कल्ब ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह वाले औलिया अल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने इस नुस्खे को पकड़ लिया, समझ गए कि मामला सारा यहीं से बनता है। हर चीज़ की सफाई है जिक्र हदीस के अंदर आता है, और दिल की सफाई जो है वो किससे होती है? अल्लाह के जिक्र से होती है, अल्लाह के नाम से होती है। तो जितने भी बड़े अल्लाह के औलिया अल्लाह गुजरे हैं, जितने भी बड़े बड़े आदमी गुजरे हैं जिनके नाम हमारे सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके नाम अब तक जिंदा हैं अल्लाह वालों के, देखिए उनका ये जितना भी मुकाम मिला है मार्फत का, जिस चीज़ का भी नाम मिला है वो किस चीज़ से मिला है? अल्लाह के जिक्र से मिला है। अल्लाह के जिक्र के उन्होंने मेहनतें की हैं, बड़ी सख्त मेहनतें की हैं। ये नहीं कि भाई 10 तस्वीर कर ली या 5 तस्वीर कर ली, इससे तो कोई क्या सफाई होगी दिल की, क्योंकि गुनाह तो होते हैं हर वक्त, निगाह से गुनाह हो रहा है, जबान से हो रहा है, हाथ से हो रहा है, तो हर तब्बी को साथ साथ मिटाना होता है। शेख रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि भाई देखिए ये जिक्र अल्लाह जो है, अजीब तारीफ की उन्होंने कि दायमी चीज़ है, ये फॉरएवर की चीज है, ये नहीं कि भाई आज कर लिया कल छोड़ देने, ये तो कब्र तक, जब तक इंसान कब्र में नहीं पहुंच जाता, मौत को नहीं देख लेता, उस वक्त तक अल्लाह का जिक्र जारी होना चाहिए, उस वक्त तक अल्लाह का जिक्र जारी होना चाहिए। इतनी इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब आप अहमियत ये समझ लें कि सारे अमाल की जो जड़ है इतनी भी है, सारी जाके बन के किससे बनती है, अल्लाह के जिक्र से बनती है। कुरान में अल्लाह ताला ने की आयत बहुत बड़ी प्यारी आयत निकली है, उसमें नौ मुकामात इंसान के बताए हैं, सारे मुकामात इन्नल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल कानितीन वल कानिकात वस साबिरीन वल साबिरात वल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात, नौ करीब बताए अल्लाह ताला ने, मुस्लिम मर्द मुस्लिम औरतें, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, सब्र करने वाले मर्द सब्र करने वाली औरतें, खर्च करने वाले मर्द खर्च करने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द सदका देने वाली औरतें, बंदगी करने वाले मर्द बंदगी करने वाली औरतें, ये सारे अल्लाह ने बताए, यानी पूरा क्वालिटी जितनी भी एक इंसान के अंदर सारी की सारी बताई हैं। फिर आखिर में क्या हालत आने, वस्कुरुल्लाह कसीर वस्कुरुल्लाह कसीर फरमाया है कि जो जिक्र करने वाले कसरत से मर्द हैं और कसरत से जिक्र करने वाली औरतें हैं, आदिल्लाह मगफरत वज़्र अज़ीम, इनके लिए जाके हमने सब मगफरत का और अज़्र अज़ीम का सामान तैयार किया है, अल्लाह पाक फरमाते हैं। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है, गुज़गंदी ने लिखा है कि सारी सिफात मुसलमान होना, मोमिन होना, साबिर होना, खर्च करने वाला होना, जितनी सिफात इंसान में चल रही है सारी, खर्च करने वाला होना, रोज़ा रखने वाले होना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होना, मर्द या औरत, ये मुकाम सारे किससे मिलेंगे, आखिरी में जो बताया ना वो ज़िक्रुल्लाह कसीर ज़ाकिरात, कि कसर से जिक्र करने वाले, सब जो मुकाम तय करता है इंसान किस चीज़ से करता है, अल्लाह के जिक्र से करता है। तो कोई वाकई संजीदा है, ये जिक्र जो है भाई पीरी मुरीदी नहीं है, ये ना पीरी मुरीदी का नाम है ना कश का नाम है, ये तो है जमियत कल्ब का नाम है, कि जब तक दिल के अंदर जमियत ना आ जाए, रोशनी ना आ जाए, उस वक्त तक ये जिक्र जो है समझो अभी काम नहीं कर रहा। एक आदमी को जो जिक्र करने वाला उस वक्त तक मुतमईन ना हो, जब तक वो देखे कि उसका नीयत सही नहीं हो रही, उसमें इखलास नहीं आ रहा और उसके अमल के अंदर कोई सही अमल नहीं हो रहा, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अमल नहीं हो रहा, तो समझे हर चीज़ बेकार है उसकी, और उसको और ज़्यादा जिक्र करना चाहिए कसरत के साथ, और जिक्र करना चाहिए कसरत के साथ। अल्लाह ताला इसलिए कुरान में फरमाया कसीरा कसीरा जिक्र के बारे में, कसरत से मुझे याद करो, ये बहुत ही ज़बरदस्त और अहम चीज़ है ज़िंदगी की, इसके लिए इंसान को बहुत संजीदा होना चाहिए। आखिरत आनी है, मौत आनी है, हमने इस दुनिया से जाना है दोस्तों, तो जब हमारी नीयत ही सही नहीं हुई, हमारे अंदर इखलास ही हमारे अंदर नहीं आया, हमारे अमाल गलत हो गए, जब तक कल्ब साफ नहीं होगा उन नमाजों की उन चीज़ों की अमाल की वक़्त अल्लाह के नज़दीक क्या होगी। तो अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला ने कल्ब की सफाई नसीब फरमाए, और जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी है ज़िक्र अल्लाह, इसको पाबंदी के साथ करें, किसी अल्लाह वाले की सोबत को अख्तियार करें, उसके बाद बैठें, उससे अल्लाह का जिक्र सीखें, और जिक्र के साथ फिर अपने वजूद को देखें इंसान, अपनी नीयतों को हम सही करें, अपने अखलास पैदा करें, अपने अंदर अमल की जो है मामला सही करें, तो जो मुकामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस दर्जे पर भी अल्लाह ताला उन मुकामात को अता फरमाते हैं। हर चीज़ मेहनत से मिलती है और बग़ैर मेहनत की कोई चीज़ नहीं मिलती, आप ये देख लें कि रोटी भी नहीं बग़ैर मेहनत की मिलती है, रोटी के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, पहले काश्त करो, उसमें फिर बीज डालो, फिर उसमें पानी दो, होते हैं ना, उसकी देखभाल करो, फिर उस पौधे को देखो, फिर इंतज़ार करो, कीड़ों से बचाओ, फिर जाकर वो पौधा निकलता है, फिर उसमें से एक गंदम का दाना निकलता है, फिर उसको काट छांट करो, फिर उसको निकालो, निकालने के बाद उसको साफ़ करो, साफ़ करने के बाद उसको फिर चक्की में लेकर जाओ, फिर चक्की में उसको पीसो, पीस के फिर उसको लाओ, लाने के बाद फिर उसको पानी से गूंदो, पानी से गूंदने के बाद जनाब उसको फिर आग लगाओ, इस पर तवा रखो, और फिर जाके जनाब पकाने के बाद रोटी को डालो, तब जाके जाके पेट हमारा सही होता है। कितनी मेहनत मिलती है, आराम से नहीं ना मिली, देख हम भाई ठीक है हम खरीद लेते हैं, लेकिन असल स्टोरी तो ये है, इस रोटी जो हम एक निवाला खाते हैं इसकी हिस्ट्री देखें कितनी मेहनत के बाद आया है। तो अल्लाह को मिलना बहुत आसान है क्या, सुबहानअल्लाह, अल्लाह को पाना क्या बहुत आसान है, उसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। फर्क ये है कि ये जो हम गंदम शब्द बोते हैं इसमें तकलीफें भी आते हैं, इंसान की परेशानी भी आती हैं, थक भी जाता है, फला होता है, तब जाके गंदम मिलती है, राख में कहता चलो पेट भर गया बस इतना ही होता है, वो भी फुदला बन के पैर से फौरन निकल जाता है, वो भी उसके साथ नहीं देता, आप खत्म हो जाते हैं, थोड़ी देर की बात है। लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो मेहनत होती है उसमें तकलीफ नहीं होती, उसमें मजा आता है, उसमें मजा आता है, याद रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बंदा राजी करता है और उसमें चलता है, उसमें मेहनतें करता है, रात को जागता है, जिक्र की तस्वीर करता है, जिक्र करता है, अल्लाह वाले की सोहबत में बैठता है, खानकाओं को चक्कर काटता है, अल्लाह वालों के जूते उठाता है, खिदमतें करता है, समझे ना साहब, और खूब भागता है, दौड़ता है, ये सब मेहनतें हैं ना इस रास्ते की, कोई बगैर मेहनत के किस तरह अल्लाह मिलेगा, चलो ठीक है हो गया काम, ऐसा नहीं, हिम्मत करे इंसान अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका इनाम कितना है, वादल्लाह अल्लाह वाजिन अज़ीमा, अल्लाह कहते हैं मैंने तैयार किया है तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारी तैयार मग़फ़रत, अल्लाह अकबर, माफ़ी बख्शिश के समान अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए कर दी है। अज़्र अज़ीम, इसके बाद क्या है, अज़्र अज़ीम, अज़्र भी नहीं, अज़्र अज़ीम, अल्लाह अज़ीम है, उसका अज़ीम क्या होगा जो इंसान को अता फरमाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है दोस्तों, नीयत कर लोगे कम से कम जो जिक्र कीजिए, मजालिस अल्लाह ने हमें दी है, ये बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने हमें नाथ फरमाई है, इसको ज़ाया ना करो। आप कहने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मेरे आने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, ये सब एक चीज़ है जो अल्लाह ने इंतज़ाम किया है, खुद ब खुद किया है, इसको छोटा ना समझो, अल्लाह के जिक्र की मजलिस को छोटा ना समझो, अल्लाह करीम है, एक एक चीज़ लिखते हैं, अगर कोई जितनी सेक्रीफाइस करता है, जितनी सेक्रीफाइस करता है, जितनी कुर्बानी देता है इस रास्ते पर, अल्लाह सुबहान तआला इतनी उसको अजर अजीम अता फरमाते हैं। हम जिंदगी में हैं, काम भी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, दुकान भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, लेकिन ये शाम का ही वक्त है, इंसान फारिग होता है, थक भी जाता है, यही तो अल्लाह की आजमाइश है। मैं देखता हूँ इसके बाद कौन बंदा है जो जिसको मैंने रिजक दिया, रोजी दी, और उसके बाद पलट के वो आता है कि ये रोजी तो सब पेट तक थी, मैं तो उस रोजी को चाहता हूँ जो आखिरत की रोजी है, उसके लिए कुर्बानी देता है, तो अल्लाह क्या हिसाब नहीं करेगा। एक आम आदमी के लिए आप कुछ थोड़ी एहसान कर दें तो आपको इतना एहसान मांगता है, तो अल्लाह सुब्हान कहता है मैं तो मोहब्बत करता हूँ मोहसिन से, अल्लाह युहिब्बुल मोहसिन, इनको मोहसिन कहा जाता है कि जो इस तरह कुर्बानी दे के आते हैं, आंखें बंद होती हैं, जिसम थके होते हैं बेचारे, अपनी दुकानों से कारोबारों से ख्याल से भी चलो अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह के जिक्र में बैठेंगे, और खौफ ये होता है कभी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र में बैठेंगे हमारे जिसम सही होंगे, हमारा कल्ब सही होगा, और जो इस मेहनत से आता है जहर है वो उससे कहीं बेहतर है, जो अपने घर में बैठा है और मतलब उसको कोई काम भी नहीं है, और जना खूब ना दो खा पी के आगे चलो भी अल्लाह का जिक्र है, हाँ तो उसका भी मामला है, लेकिन उसका उसका तो हमको मुकाबला नहीं हो सकता जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो कुर्बानी देने वाले उनको भी दावत इसी तरह है जैसे जो आराम करने वाले हैं, जो जितने फासलों से आएंगे, जितनी मुश्किल से आएंगे, जितनी मेहनत से आएंगी। मैंने बहुत सी खवातीन की बातें सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं जब आपको जिक्र होता है तो उस दिन तो हम खाना पीना भी बहुत मुख्तसर कर देते हैं, जल्दी जल्दी अपने समेट लेते हैं कामों को, और हम जो कुछ भी औरतें बेचारी कितनी मसरूफ़ होती हैं, बच्चों को सुलाना, बच्चों को तैयारी करना, फिर खाना बनाना, समय हम जिक्र के लिए हर काम की टाइमिंग ख़त्म कर देते हैं, और जैसे ही आपका जिक्र शुरू होता है हम अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू करके बैठ जाते हैं। तो अल्लाह के इन चीज़ों की बड़ी कदर है दोस्तों, तो मेहनत जितनी हो उसको शुक्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह थकन के साथ आया हूँ, मुश्किल के साथ आया हूँ, लेकिन अल्लाह ताला इसको अजर अजीम अता फरमाएगा, दुनिया में भी और आखरत में उसकी सहूलतें मिल जाती हैं। अल्लाह ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र भी बहुत बड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जिक्र की मजलिस भी बहुत बड़ी हैं, और अल्लाह वाले भी बहुत बड़े हैं। इनके साथ बैठें, इनके साथ सोबत अख्तियार करें और मजलिसों में बैठें, ये बहुत फ़ायदा इंसान को देगा आखरत में। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। तमाम भाई नीयत करें कि जिस तरह टाइम चेंज हुआ है ज़रूर अल्लाह के जिक्र में आया करें, जुमेरात कम से कम, जुमेरात जो है वो तो जो है पीरों की रात है, कहते हैं ना फ़कीरों की रात है जुमेरात, उसको तो आप की कर लेंगे भाई, इसमें तो हमें अल्लाह के जिक्र में ज़रूर पहुँचना है, जो कुछ भी हो, हफ्ते में एक ही दफ़ा सफाई हो जाए तो बहुत है। कोशिश तो ये करें जब भी आपको मिले मैसेज तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के लिए आ जाएँ, 10 मिनट के लिए आ जाएँ, आखिरी में दुरूद शरीफ में शामिल हो जाएँ, दुआ में शामिल हो जाएँ, तो नाम लिखा जाएगा कि अल्लाह के जिक्र में। रास्ते में जो गफलतें आएंगी, सुस्तियाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी, नींद आएगी, थकन आएगी, बिल्कुल परवाह ना करें, बल्कि खुश हों कि अल्लाह सुबहान अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा इनाम देंगे, अल्लाह पाक के मैं इस हालत के अंदर आ रहा हूँ, मैं ना भी नहीं सकता हूँ, मैंने कपड़े भी नहीं बदले, मैं वैसे ही काम से उठ के आ गया हूँ, फलां चीज़ से आ गया हूँ, बिल्कुल ना घबराएं। अल्लाह के फरिश्ते नाम जो लिख रहे होंगे, जिस तरह लिस्ट अल्लाह के फरिश्ते बना रहे होंगे फलां फलां आया, तो जो आदमी इस तरह आएगा सबसे टॉप पर उसका नाम होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और जाके फिर रिपोर्ट देंगे भाई ये अल्लाह ताला ये शख्स ऐसा था कि इस तरीके से आया था, अल्लाह ताला कितने खुश होंगे इस चीज़ से, सुभान अल्लाह, मेरा बंदा जो है किस कदर इसको फिक्र है अपनी आखिरत को, कितनी मोहब्बत मुझसे करता है। तो इंशाल्लाह नीयत करें सब भाई कि इंशाल्लाह अल्लाह के जिक्र के साथ हम मोहब्बत करेंगे।